डायबिटीज की बीमारी क्या है, कितने प्रकार के डायबिटीज होते हैं, इसका कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, परंतु अभी सुनेंगे डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। वास्तव में ये क्लास आप सबके लिए एक आई ओपनिंग होगी। मेरा कहने का मतलब है, आज डायबिटीज के लिए लोग जो अलविले हैं, सचेतन नहीं है, उनमें जागृति नहीं है, ऐसे ही चलाते रहते हैं, इसका मूल कारण है अज्ञानता। उनको पता नहीं है कि डायबिटीज से क्या होता है। जब व्यक्ति जान लेता है कि इस बीमारी ऐसी जानलेवा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी आंखें खुल जाती है। तो इसलिए मैं सुना रहा था कि इस क्लास जो सुनता है, देखता है, वो कहता है इट इज ए आई ओपनर फॉर अस, हमारे लिए एक आंख खोलने जैसी एक ये क्लास है। तो इसलिए सभी भाई बहने कृपया सभी ठीक से सुनिए। बस दुष्प्रभाव क्या है डायबिटीज में, जो भी हमारे शरीर में जो भी उसका दुष्प्रभाव होता है, उसका मूल कारण है कि हाई ब्लड शुगर। जब खून में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, चाहे थोड़े समय के लिए चाहे लंबे समय के लिए, जैसे कोई हम हैवी मील लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, तो उस समय शुगर एकदम शूट करता है, लेकिन 2-3 घंटा ही ज्यादा रहता है, बाद में फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। किसी किसी का ऐसा भी होता है शुगर कभी 300 से कम होता ही नहीं है, हमेशा 300-400 रहता है कंटिन्यूअसली। तो इसलिए किसी किसी का स्पाइक के रूप में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, किसी का सस्टेन्ड रूप में होता है। जिसका स्पाइकी होता है, अर्थात थोड़े समय शूट हो जाता है फिर नॉर्मल होता है, उनका भी शरीर पर असर होता है, उसको एक्यूट टॉक्सिसिटी कहते हैं। परंतु जिसका बहुत लंबे समय तक शुगर बढ़ा हुआ रहता है, उसको हम क्रॉनिक टॉक्सिसिटी कहते हैं। चाहे शुगर थोड़े समय के लिए चढ़ा हुआ हो, चाहे लंबे समय तक शुगर बढ़ा हुआ हो, दोनों ही वास्तव में शरीर के लिए नुकसानकारक है। हमारे शरीर में जितने भी जीव कोशिकाएं हैं, उस पर वो बहुत बड़ा जबरदस्त नुकसान पहुंचाते हैं और सारे दुष्प्रभाव हम देखते हैं। तो देखिए, डायबिटीज में क्यों उसका कॉम्प्लिकेशंस होता है, इसका मूल कारण है खाने के बाद हमारे जो शुगर एकदम बढ़ जाता है। आपको नॉर्मल शुगर की मात्रा क्या बताया था, खाने के बाद कितना होना चाहिए मैक्सिमम, 140। सारे दिन में 70 और 140 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। कुछ भी नहीं खाएं तो भी 70 रहता है, और कुछ भी खा लें तो भी 140 तक पहुंचता है, उससे ऊपर गया तो खतरा ही खतरा है। तो जब हम ज्यादा शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाता है, हम देखते हैं तो लंबे समय तक जब शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, शरीर में उसका बुरा असर होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। एक कटोरी में आप पानी रखिए, सिंपल पानी, कितने दिन भी ऐसे पानी रखे रहेंगे, कुछ खराब होगा कटोरी में, कुछ होगा। लेकिन पानी में खूब चीनी डाल दीजिए, चीनी खूब डाल दीजिए, गाढ़ा हो जाए, सीरा जैसा हो जाए, थोड़े समय तक रख देंगे ऐसे, तो क्या होगा, एक महीना तक भी रख देंगे तो क्या होगा, और कटोरी के किनारे किनारे में जम जाएगा, है ना, नहीं, और वो गाढ़ा हो जाता है तो चिपकिला हो जाता है, सीरा कैसे होता है। तो इस प्रकार हमारे खून में शुगर की मात्रा 5.5% के अंदर होना चाहिए। जब हम शुगर ज्यादा हो जाता है हमारे खून में, हमारे खून एकदम स्टिकी हो जाता है, और हमारे जो नस हैं, जो खून की नलियां हैं, देखिए इसके अंदर शुगर खून के साथ बहता रहता है, लेकिन जब गाढ़ा हो जाता है खून, शुगर ज्यादा हो जाता है, तो उसमें देखिए किनारे किनारे में जमना शुरू हो जाता है। और बताया जिसका शुगर, एक भाई प्रश्न पूछे थे कि हमारा ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्यों ज्यादा हो जाता है शुगर में। जब किसी को शुगर की बीमारी होती है, शरीर शुगर को यूज नहीं कर पाता है, सारे शुगर पेशाब में बहने लगता है। खून में भले बहुत ज्यादा है, परंतु इंसुलिन जो कि हमारे एक एक कोशिका के अंदर वो शुगर को डालने की काम करता है, इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है या ना होने के कारण शुगर हमारे काम का कुछ रहता नहीं है। जब शुगर की मात्रा होते हुए भी कुछ काम का नहीं है तो शरीर क्या करता है, हमारे जो चर्बी है ये चर्बी को पिघलता है, पिघल के फिर वो फिर खून में आते हैं और वो हमें शक्ति देते हैं। तो इसलिए खून में सिर्फ शुगर की मात्रा नहीं, शुगर की मात्रा के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये भी सब बढ़ जाते हैं। ये दोनों बढ़ने के कारण फिर खून की नली में आप देखिए इसका असर हो जाता है, ये जमना शुरू हो जाता है, धीरे 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 ये खून की नली बिल्कुल एकदम बंद हो जाते हैं। इसके कारण ही सारा कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो जब जब किसी को डायबिटीज होता है उसके पेनक्रियास जो ग्रंथि है, अग्नाशय जिससे इंसुलिन बनता है, इंसुलिन कम हो गया तो खून में शुगर की मात्रा ज्यादा हो गया तो यहां खून की नली में जमना शुरू हो जाता है। इसलिए डायबिटीज में सिर्फ शुगर नहीं बढ़ता है, शुगर के साथ साथ हमारे खून की नलियों में भी असर होना शुरू हो जाता है। तो अभी तक आप सुन रहे थे डायबिटीज एक शुगर की बीमारी है जिसमें खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाने के कारण पेशाब में भी छलकने लगता है, लेकिन इतना तक नहीं, वो खून की नलियों में भी इसका असर शुरू हो जाता है। खून की नलियों में भी शुगर और वो कोलेस्ट्रॉल सारा जम के उसको ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। जब हमारे आंखों के नसों पर वो असर हो जाता है आदमी अंधा हो जाता है, जब हार्ट के नसों पर असर हो जाता है हार्ट अटैक हो जाता है, जब गुर्दे पर असर होता है किडनी फेल हो जाते हैं, जब पांव के नस बंद हो जाते हैं पांव काला हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है, टांग कटवाना पड़ता है, ब्रेन पे असर होता है पैरालिसिस हो जाता है। तो जहां जहां भी नस है वो अगर ब्लॉक हो गया तो सारा शरीर पर असर होगा। इसलिए शुगर एक ऐसी बीमारी है डायबिटीज जिसमें हमारे सारे शरीर में पूरा आपके चोटी से लेके एड़ी तक सब कुछ मीठा हो जाता है, पूरा सारा शरीर मीठा हो जाता है, हर नस पर इसका असर होता है। तो इसलिए शरीर में एक भी ऑर्गन नहीं रहता है, एक भी कहीं जगह नहीं रहता है जिस पर इसका बुरा असर नहीं होता है। इसलिए देखिए जब आंखों पर असर होता है आंखें अंधे हो जाते हैं लोग, जब ब्रेन पर मस्तिष्क पर असर होता है तो पैरालिसिस हो जाता है, जब हार्ट पर असर होता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी पर असर होता है तो नेफ्रोपैथी कहते हैं किडनी फेल हो जाता है, नसों पर असर होता है तो न्यूराइटिस हो जाता है। बहुत भाई बहने पूछ रहे थे मेरा पांव क्यों जलता है, क्यों एकदम सुन्न हो जाता है, क्यों दुखता है, ये नसों पर असर हो जाता है। अगर हमारे रक्त नलियों पर असर हो गया तो भी गैंग्रीन हो जाता है, काला हो जाता है, काटना पड़ता है पांव। और देखिए हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्त नलियां है, एक है बहुत छोटी 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 नलियां, एक होते हैं बड़े बड़े नलियां। जब छोटी नलियों पर असर होता है उसको माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, बड़े नसों पर जब असर होता है उसको मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। माइक्रोवास्कुलर क्या है, जब आंखों में, गुर्दे में और नर्वस सिस्टम में जब इसका असर होता है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी इसको कहा जाता है। और बड़े नसों पर जब असर होता है ब्रेन में सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, हार्ट में होता है तो कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज, और पांव में नसों पर असर होता है तो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, ऐसे नाम से उसको हम कहते हैं। कुछ भी हो, कहने का मतलब है एक नॉर्मल व्यक्ति और एक डायबिटीज मरीज के साथ जब उसको हम भेंट करेंगे, नॉर्मली भी एक व्यक्ति अंधा हो सकता है, उसके आंखों में असर हो गया, कुछ चोट लग गया, मोतियाबिंदु हो गया तो वो अंधा हो सकता है। लेकिन एक डायबिटीज के मरीज एक नॉर्मल व्यक्ति से 25 गुना अंधा होने का संभावना रहता है, 25 गुना, 25 टाइम्स। एक व्यक्ति का ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी कभी टांग काट देते हैं हम हॉस्पिटल में, कुछ और भी बीमारियां होती है तो टांग कटवाना पड़ता है कभी कभी, परंतु डायबिटीज के कारण एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ भेंट किया जाए तो 20 गुना ज्यादा टांग कटने का संभावना रह जाती है। और इस प्रकार स्ट्रोक होना, पैरालिसिस होना 6 गुना संभावना ज्यादा, हार्ट अटैक 2-3 टाइम्स ज्यादा संभावना है, और किसके किडनी खराब होना 5 गुना ज्यादा एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ अगर भेंट किया जाए तो किडनी फेल होने की संभावना रह जाती है। तो देखिए डायबिटीज की बीमारी कितना एक खतरनाक बीमारी है। आपको पता है कि 10 में से 8 लोगों को हार्ट अटैक होता है डायबिटीज में, 10 में से 8। और ज्यादातर माताओं को जो उनका मंथली महीना कर्म जो मास कर्म है बंद हो जाता है, उसके बाद जो हार्मोनल प्रोटेक्शन होता था मैं बताया था सवेरे, वो जब खत्म हो जाता है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, 100% हार्ट अटैक होने की संभावना है। तो इसलिए ये दोनों को मैं कहता हूं दो आतंकवादी है, दोनों हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये दो आतंकवादी है। एक आतंकवादी जाता है किसी देश में, घुसता है तो हलचल कर देता है, अगर दो दो घुस गए तो क्या करेंगे। तो इसलिए देखिए कोई भी माताएं जिसको भी डायबिटीज ब्लड प्रेशर है, कृपया आपको ध्यान रखना है, शुगर को कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखना है, नहीं तो 80% लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। इस प्रकार 60% लोगों के आंखें खराब हो जाती हैं, अंधे हो जाते हैं, 100 में से 60 लोग। आप सोचिए 50% लोगों को न्यूरोपैथी होती है, अर्थात पांव में सुनापन, जलन, रात भर सो नहीं पाते हैं, इतना तकलीफ होता है, बात मत पूछिए, चलते चलते चप्पल भी निकल जाता है, उनको पता नहीं इतना दूर जाने के बाद है मेरा चप्पल कहाँ गया, देखते तो पीछे है, कहीं लग जाता है तो घाव हो जाता है, सालों साल नहीं भरता है, ऐसी हालत होती है कि बात मत पूछिए। इस प्रकार 40% लोगों के किडनी खराब हो जाते हैं, और 40% लोगों को जिसको डायबिटीज है साथ साथ ब्लड प्रेशर भी होता है। लेकिन कई भाई बहने मेरे पास आते हैं, मैं पूछता हूं, मुझे पूछते हैं डॉक्टर साहब मेरा थोड़ा शुगर चेक कर लो। मैं कहता हूं कभी आप ब्लड प्रेशर चेक कराए हो? नहीं, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हमारे खानदान में किसको नहीं है, मुझे खाली शुगर है। मैं पूछता हूं कभी चेक कराए हो क्या? तो नहीं, कभी नहीं चेक कराए। जब चेक किया जाता है 99% लोगों को ब्लड प्रेशर साथ साथ होता है। तो इसलिए जैसे डायबिटीज एक जानलेवा बीमारी है, एक साइलेंट बीमारी है, एक स्वीट किलर है, इस प्रकार हाई ब्लड प्रेशर भी ऐसे एक खामोश जानलेवा बीमारी है, ये भी साइलेंट किलर है। आप जब तक चेक नहीं करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 40% डायबिटीज मरीजों का ब्लड प्रेशर भी ज्यादा रहता है, और कई ऐसे हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज भी आते हैं, मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा चेक कर लीजिएगा। मैं पूछता हूं आपको हाई ब्लड प्रेशर है क्या? कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। मैं कहता हूं कभी शुगर चेक किए हो? कहते नहीं नहीं मुझे बिल्कुल शुगर नहीं है, हमारे घर में किसी को नहीं है शुगर, नहीं है मुझे शुगर नहीं है। कहते कभी चेक किए हो क्या? कहते नहीं चेक नहीं किया। करो चेक 200-250। तो इसलिए कभी भी धोखे में नहीं रह जाना, मुझे कुछ नहीं है। हमेशा ये बीमारियां साथ साथ सबको ले आते हैं, जब तक आप चेक नहीं करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है, और एक दिन सडन कॉम्प्लिकेशंस लेके अंधे होके किडनी खराब करके हार्ट अटैक करके जब आईसीयू में दाखिल होना पड़ता है तब पता चलता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों हमेशा चेक कराना, अपना शरीर का हेल्थ चेकअप कराना बहुत जरूरी है। अब देखिए आज दुनिया में जितने लोग भी अंधे हो रहे हैं, सबसे एक मुख्य कारण डायबिटीज है। दुनिया में जितने लोग अंधे हो रहे हैं सबसे एक बहुत बड़ा एक मुख्य कारण डायबिटीज है। जितने लोगों का किडनी खराब हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, इसका एक मुख्य कारण डायबिटीज है। जितने लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है उसके पीछे डायबिटीज है। जितने लोगों का टांग कटवा जा रहा है किसी भी हॉस्पिटल में, अगर देखेंगे मेजोरिटी लोगों को डायबिटीज है। तो ये एक ऐसी जानलेवा बीमारी है, इसके बाद क्या बताऊं आपको, आप एक एक कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी मैं आपको पूछता हूं डायबिटीज क्या है। पहले आपको पूछा था डायबिटीज क्या है, तो क्या बताया? डायबिटीज एक शुगर की बीमारी है। जी वॉल्यूम ठीक तो है? वॉल्यूम ठीक तो है? तो देखिए डायबिटीज अगर क्या है, अगर आपको पूछा जाए तो आप उत्तर देते हैं कि डायबिटीज एक शुगर की बीमारी है जिसमें खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण फिर पिशाब में भी वो शुगर बहने लगती है। अगर आप इतना कहते हैं अभी ये कॉम्प्लिकेशन सुनने के बाद, अगर इतना कहते हैं, मैं कहूंगा आपका उत्तर सही नहीं है, अधूरा है। आपको क्या कहना चाहिए बताइए भाई जी, क्या कहना चाहिए? डायबिटीज एक शुगर की बीमारी, ठीक है, ये उत्तर दिया ठीक है, ये आधा हुआ, और आधा उत्तर क्या होना चाहिए? और आधा उत्तर होना चाहिए कि डायबिटीज एक शुगर की बीमारी तो है, लेकिन साथ साथ ये बीमारी हमारे रक्त नलियों को, जो खून के नलियों को, उस पर भी असर डालता है, जिसके कारण हमारे आंखों पर, हमारे ब्रेन पर, हमारे हार्ट पर, हमारे गुर्दों पर, हमारे टांग पर, सब पर इसका असर होता है, और ये ऑर्गन सारे कभी ना कभी फेल हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाता है और ये ऑर्गन फेल हो जाते हैं। तो आप अगर दोनों उत्तर देते हैं, मैं कहूंगा राइट है। इसलिए कहावत है, डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिक कम वास्कुलर डिजीज, खाली शुगर की बीमारी नहीं है, रक्त नलियों की भी बीमारी है। जिस रक्त नली में शुगर, खून के साथ शुगर घुला हुआ शुगर बहता है, वो रक्त नलियों पर भी असर डालता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल शुगर जम जाता है और नलियों को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है, जिसके कारण आदमी अंधा हो जाता है। तो शुगर एक शुगर, डायबिटीज एक शुगर की बीमारी, बट साथ साथ रक्त नलियों की भी बीमारी है, समझा? अगर दोनों कहेंगे तो मैं कहूंगा राइट कहा। तो देखिए, डायबिटीज में क्या होता है, एक तो बहुत जल्दी मोतियाबिंद हो जाता है। एक व्यक्ति जब बूढ़ा होता है, उसके आंखों के जो लेंस है वो ओपेक हो जाते हैं, सफेद हो जाता है, रोशनी अंदर जाता नहीं है, तो आदमी देख नहीं पाता है। लेकिन जिसको डायबिटीज होता है, शुगर वो लेंस के अंदर भी घुस जाते हैं, जिसके कारण लेंस एकदम मोटा हो जाता है, पानी उसके साथ भी घुस जाता है, आदमी को धुंधला दिखता है, ठीक नहीं दिखता है, और बहुत जल्दी मोतियाबिंदु कट्रैक्ट हो जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति को 60-70 साल में अगर मोतियाबिंदु होता है, किसी को डायबिटीज है तो 40 साल की उम्र में भी मोतियाबिंदु शुरू हो जाता है। साथ में ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट में अटैक आ जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस आदि मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट होता है, किडनी फेल हो जाते हैं, मसूड़े सड़ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ये पांव के हड्डियां चूर चूर हो जाते हैं, सार्कोइड आर्थ्रोपैथी हो जाती है, एक एक शरीर का एक एक अंग पर इसका असर है। हम अभी देखते हैं आंखों में क्या असर होता है। हमारे आंखों में जो असर होता है, वास्तव में हमारे आंखों के जो ऊपर आई लीड है, आंखों के जो ऊपर पर्दा है, इस पर असर होता है, आंखों के अंदर इन्फेक्शन होता है, लेंस पर असर होता है, और अंदर जो पर्दा है, ये पर्दे के ऊपर भी असर होता है, जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं। जो हम देखते हैं, रोशनी अंदर जाती है, हमारे आंखों के पिछले भाग में एक पर्दा है, वो पर्दा अगर सही सलामत है तो हमें सब कुछ दिखाई देता है, वो पर्दे पर असर हो गया तो आदमी को कुछ दिखाई नहीं देगा, अंधा हो जाता है। तो डायबिटीज में दोनों असर होता है। देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति को ऐसा दिखता है, पूरा क्लियर दिखता है, लेकिन उसके पर्दे पर असर हो गया तो उसके ऊपर ऐसे काले काले पैचेस दिखते हैं, जिसके कारण आदमी को कुछ दिखता नहीं है, वो एक अंधा जैसा हो जाता है। कभी कभी नसों पर असर होता है तो पैरालिसिस हो जाता है, तो आंखें के पर्दे ऐसे आप ऐसे बंद नहीं कर सकेंगे, हमेशा ऐसे खुले ही रह जाएगा, तो फिर फॉरेन बॉडी कुछ भी गिर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अंदर इन्फेक्शन हो गया तो पस जम जाता है अंदर, हाइपोपियन कहते हैं। कभी कभी आयराइटिस हो जाती है अंदर, आयरिस का इन्फेक्शन होता है। कभी तो उसके अंदर अल्सर हो जाता है, छेद हो जाता है, तो अंदर तक पूरा एकदम घुस के आदमी अंधा हो जाता है। तो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब, एक आदमी को मोतियाबिंदु हो सकता है, उसके जो आई लीड है, देखिए इसमें इन्फेक्शन हो गया, इसको स्टाइव या होडियोलम कहते हैं। रेटिनोपैथी हो सकता है, उसके अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो ग्लोकोमा कहते हैं, ग्लोकोमा हो जाता है, आदमी अंधा हो जाता है इसके कारण। और जैसे बताया, किसी को अगर रेटिनोपैथी हुआ तो एक नॉर्मल व्यक्ति को ऐसा दिख रहा है, देखिए ड्राइविंग कर रहा है, गाड़ी चल रहा है, तो ऐसा दिखता है सामने। अगर मान लीजिए उसके पर्दे पर असर हो गया डायबिटीज का, ऐसा दिखेगा, सामने गाड़ी आ रही है, जा रही है, कुछ दिख रहा है, क्या होगा? एक्सीडेंट होना सुनिश्चित है। तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, लेकिन आप जब तक चेक नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। सडन एक दिन आएंगे, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, जब चेक करो तो टू लेट। इसलिए साल में एक बार हर एक डायबिटीज पेशेंट को आंखों के पर्दे का चेकअप करना है। एक होता है नंबर चेक करना, वो बाहर वो दिखाते हैं पढ़ाते हैं, ये दिख रहा है ठीक से, ये नंबर ले लो जाओ। वास्तव में वो कोई पर्दा का चेकअप नहीं है, वो रिफ्रैक्शन टेस्ट है। वो भी एक बात आप नोट करके रखिए, जब आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, आपका शुगर अगर कंट्रोल नहीं है, कभी भी चश्मा नहीं बनाइए। क्योंकि लोग कमर्शियल होते हैं, उनको तो चश्मा बेचने का धंधा है। आप कभी भी जाएंगे, कभी नहीं पूछेंगे आपका शुगर कंट्रोल है कि नहीं, जो भी आया चश्मा लिख देंगे आप, थोड़े दिन में वो चश्मा बेकार हो जाएगा, फेंक देंगे आप। जब आपका शुगर कंट्रोल हो गया वो चश्मा दिखेगा नहीं, फिर शुगर बढ़ गया दिखेगा नहीं। तो आपका 2-3 महीना तक शुगर पूरा बरोबर कंट्रोल में है तो चश्मा बनाइए। अगर ऐसे जाके शुगर अनकंट्रोल है, 300 शुगर 400 शुगर जाके चश्मा बना दिए, 2 दिन में फेंक देंगे, कुछ दिखेगा नहीं आपको। इसलिए कभी भी चश्मा नहीं बनाइए शुगर कंट्रोल नहीं तो। समझा? अंडरलाइन करके रखा, नहीं तो आपको ऐसे ठगी करेंगे, लूटेंगे। आप बाद में पूछेंगे तो अच्छा होगा, क्वेश्चन नोट करके रखिए, लास्ट में मुझे लिख के दे दीजिए। क्या होगा बीच में फिर फ्लो ये हो जाता है। आप क्वेश्चन नोट करके रखिए, लास्ट में मुझे देंगे तो मैं सब क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। अब देखिए, ये डिफेक्टिव विजन है। एक नॉर्मल व्यक्ति का जो पर्दा है वो ऐसा दिखता है। ये मैकुला है जहां हमारे लाइट का फोकस होता है। ये हमारे नसें हैं जो एकदम बढ़िया है, स्मूथ है, देखिए। लेकिन जब उसके रेटिना पर असर हो जाता है, ये नसें, वो जो वॉल है वो कमजोर हो जाते हैं, फट जाते हैं। फटने के कारण वहां ब्लीडिंग हो जाती है, वहां एक्जुडेट्स जमा हो जाते हैं, सफेद सफेद लाल लाल हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। देखिए कैसे, ये देखिए स्पॉट्स, देखिए ये स्पॉट्स हो गए हैं। और ज्यादा हो जाता है तो ये नए नए ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाता है जो बहुत फ्राजाइल होते हैं। थोड़ा सा ही प्रेशर ज्यादा हो गया, फट जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा अंदर। तो देखिए, डायबिटीज में अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो आंखों के अंदर के जो नस होते हैं वो फटने का बहुत संभावना रहता है और आदमी अंधा हो जाता है। इसलिए ब्लड प्रेशर 130-80 से कभी ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर डायबिटीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ तो आंखें अंधे होने का, किडनी खराब होने का, फेल होने का बहुत संभावना रहता है। और ज्यादा अगर असर हो गया, देखिए कैसे पूरा ब्लीडिंग हो गया अंदर। और ज्यादा असर हो गया तो बहुत ब्लीडिंग हो जाती है अंदर, पूरा ब्लड में भर जाता है, तो आदमी बिल्कुल अंधा हो जाता है, कुछ नहीं दिखता है फिर। तो ऐसे कंडीशन में जब मरीज आता है हमारे पास, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर शुरुआत में आया, उसका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल किया, लेजर थेरेपी द्वारा जहां जहां लीक हो रहा है सील कर दिया, तो आदमी नॉर्मल देख सकता है, उसका विजन रिटेन कर सकता है। लेकिन आपने कभी चेक नहीं किया, आपको पता भी नहीं, ब्लड प्रेशर एकदम 200 रहता है, बहुत हाई रहता है, शुगर भी हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, कभी चेक नहीं कराया। एक दिन जब हमारे पास आते हैं, कहते डॉक्टर साहब काला काला दिखता है, डॉक्टर साहब कोई ऐसे रिंग रिंग जैसा दिखता है, पता नहीं क्या धुंधला दिखता है। जब आके चेक करते हैं तो देखो तो अंदर एकदम फट गया है नस, ब्लीडिंग हो गया है। क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। और दिन प्रतिदिन और डिटोरेट होता है और अंधे हो जाते हैं लोग। तो इसलिए मेरे दोस्तों, साल में एक बार आंखों का चेक करना जरूरी है। नहीं चेक करेंगे तो आप अंधेरे में रहेंगे, एक दिन अंधा हो जाना पड़ेगा, उस समय टू लेट, पश्चाताप करने से भी कोई फायदा नहीं। तो देखिए, आपके आंखों को आप बचाइए, ये आपके हाथ में है। आपके डॉक्टर को हमेशा, जो अच्छे डॉक्टर हैं आंखों के, उनका सलाह लीजिए, उनको बताइए, साल में एक बार कम से कम चेक करा लीजिए। आपको कभी भी धुंधला दिखता है, कोई रिंग जैसा दिखता है, कोई स्पॉट्स जैसा दिखता है, तो जरूर बताइएगा, छिपाइए नहीं। आप छिपाएंगे तो आपको ही नुकसान होगा। इस प्रकार किडनी पर क्या होता है, जब किडनी पर भी शुगर ज्यादा हो जाता है, उसके नसों पर ब्लॉक हो जाता है, तो जो फिल्टर का काम करना किडनी, वो ठीक से फिल्टर नहीं हो पाता है, उसमें छेद होते हैं, वो बड़े बड़े हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो हमारे शरीर से शुगर के साथ साथ प्रोटीन भी लीक होना शुरू होता है, प्रोटीनूरिया हो जाता है, तो पांव सूजना शुरू हो जाता है, फेस सूजना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर एकदम बहुत ज्यादा हो जाता है, किडनी आखिर फेल हो जाते हैं। तो इसलिए नेफ्रोपैथी हो जाता है। और जब नेफ्रोपैथी हो जाता है तो पेन किलर आप कभी भी नहीं खाइए। जिसको भी डायबिटीज है आप अंडरलाइन करके नोट करके रखिए, कुछ भी थोड़ा सा होता है लोग पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं। खास करके जो भोवेरान, डाइक्लोफेनाक ये सब खाते हैं, ये आपके किडनी सत्यानाश हो जाएगा, मैं आपको कहता हूं। और किसी भी जीपी के पास जाएंगे, प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे, तुरंत लिख देगा वो खा लो ये, और लोग सालों साल खाते रहते हैं। थोड़ा सा सहन नहीं करेंगे और पेन किलर खाएंगे, लास्ट में किडनी खराब करके आते हैं। कभी भी पेन किलर नहीं खाएंगे, अगर खाना है तो 2-3 गोलियां हैं लिख लीजिए आप। कभी भी कहीं दर्द होता है तो लिखिए। पैरासिटामोल आप खा सकते हो, क्रोसिन नाम से आता है, काल्पोल नाम से आता है। ये पैरासिटामोल की टेबलेट आप कभी भी बुखार होता है, सरदर्द होता है, कहीं दर्द होता है तो पैरासिटामोल की गोली खाइए। दिन में 2-3 गोली खा सकते हैं, खाने के बाद कोई नुकसान नहीं होगा। अगर पैरासिटामोल काम नहीं करता है तो और एक गोली लिखिए, ट्रामाडोल, TRAMADOL, ट्रामाडोल। ट्रामाडोल गोली खाएंगे तो भी आपका किडनी खराब नहीं होगा। तो भी काम नहीं करता है तो ट्रामाडोल और पैरासिटामोल दोनों मिला के गोली आती है, अल्ट्रासेट नाम से आता है, ULTRACET, अल्ट्रासेट। नहीं तो काल्पोल टी नाम से आता है, कई कॉम्बिनेशन है कई कंपनी के, ये दोनों का कॉम्बिनेशन गोली खा सकते हैं। अल्ट्रासेट, ULTRA, अल्ट्रासेट, अल्ट्रासेट, ये गोली दिन में 2-3 बार खा सकते हो खाने के बाद। अगर बहुत कहीं दर्द होता है, कुछ होता है तो खाइए, अगर कम दर्द होता है तो चला लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, शरीर को भूलने के लिए प्रयास कीजिए। अगर ज्यादा दर्द होता है तो कोई बाम लगा दीजिए, बहुत प्रकार के जेल आते हैं आजकल, नोबेल जेल, रिलैक्सिल या भोवेरान जेल, आप वो लोकल जेल लगाइए, उसमें नुकसान नहीं है। परंतु गोलियां खाएंगे कुछ दिन के बाद किडनी खराब करके आएंगे, उस समय टू लेट, फिर डायलिसिस करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी पेन किलर नहीं खाइए, माइंड इट, पेन किलर नहीं खाइए। और आपके कहीं पांव में सूजन होता है, आंखों में सूजन होता है सवेरे सवेरे उठते ही, और पेशाब में झाग आता है, पेशाब बहुत बार बार जाना पड़ता है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, कमर में दर्द होता है, आपको एकदम ठंडी लग के बुखार हो रहा है, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, ये सब लक्षण है, आपकी किडनी तक इन्फेक्शन पहुंच करके किडनी खराब हो सकता है। चलाइए नहीं, हमेशा डॉक्टर का राय लेके ट्रीटमेंट कराइए, छिपाइए नहीं कोई भी चीज। लंबे समय तक आपने छिपाया तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। हमारे मसूड़े पर, दांतों पर क्या असर होता है? डायबिटीज और दांतों का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, अक्सर करके देखा जाता है डायबिटीज मरीजों के दांतों में इन्फेक्शन हो ही जाता है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं हमारे मसूड़ों में थोड़ा बहुत रह जाता है कहीं लग के दांतों के बीच में। आपके शुगर खून में ज्यादा है तो जर्म्स और बैक्टीरिया को बहुत अच्छा भोजन मिल जाता है, बहुत अच्छा फीस्ट मिल जाता है उनको, फटाफट ग्रो करेंगे, इन्फेक्शन फैल जाता है। तो एक गोल्डन प्रिंसिपल आप याद रखिए, अंडरलाइन करके लिखिए, लिख के रखिए, कुछ भी खाने के बाद मुंह तुरंत कुला करेंगे। सभी बोलिए, खाने के बाद मुंह तुरंत कुला करेंगे। सभी ने बोला? नहीं बोला, फिर से बोलिए, खाने के बाद तुरंत मुंह का कुला अच्छी तरह से करेंगे। अगर नहीं करेंगे, यहां खाने पीने की चीज अगर कहीं लग के जमा हो गया तो वही नुकसान करता है। और लेकिन होता क्या है, आपको बहुत अच्छी टोली दादी ने दी, कोई बहुत अच्छी मिठाई खिलाया, खाने के बाद तुरंत अगर मुंह साफ कर देते हैं तो उसका टेस्ट चला जाता है, सोचते हैं अरे खाया कि नहीं खाया पता ही नहीं चला, थोड़े समय तो मुंह में टेस्ट रहना चाहिए ना, लेकिन वही नुकसान करता है, फिर भूल जाते हैं मुंह धोने का। कुछ भी खाने के बाद अगर मुंह कुला कर दिया, अच्छी तरह से गम मसाज करा दिया, तो कभी आपका इन्फेक्शन नहीं होगा दांत में। और 2 बार ब्रश करना जरूरी है, सवेरे 1 बार और रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले करना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि रात को जो सोते हैं हम 5-6 घंटा, उस समय जर्म्स को बहुत अच्छा मौका मिलता है एकदम इन्फेक्शन करने का, अंदर बिल्कुल एकदम। तो इसलिए रात को सोने से पहले 1 बार अच्छी तरह से ब्रश कीजिए, खाली यूं 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 करके नहीं, अच्छी तरह से अंदर के सरफेस, ऊपर के सरफेस, अंदर अच्छी तरह से ब्रश कीजिए। सवेरे भी करना जरूरी है। नहीं करेंगे, अगर एक बार दांत में इन्फेक्शन हो गया, आपका शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगा, कभी कंट्रोल नहीं होगा। शुगर कंट्रोल नहीं है तो दांत में इन्फेक्शन होगा, दांत में इन्फेक्शन है तो शुगर कंट्रोल नहीं होगा। और किसी के दांत में अगर इन्फेक्शन है, मैं हमेशा कहता हूं, आप कोई मंदिर में मूर्ति का दर्शन करने जा रहे हैं, उस मंदिर का मुखशाला ही बहुत गंदा है, बहुत गंदा। आप अंदर जाके मूर्ति का दर्शन करने की इच्छा होगी? सामने वो मुखशाला ही बहुत गंदा है, जाने की इच्छा होगी? इसी प्रकार हम किसी के स्वास्थ्य के बारे में जब उसका मुंह देखते हैं, समझ जाते हैं, क्योंकि मुंह से जो बदबू निकलता है, जो जर्म्स होते हैं, ये लार के जरिए से, थूक के जरिए से अंदर जाता है, आंतड़ी में इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन, हार्ट में इन्फेक्शन, सारे शरीर में इन्फेक्शन फैलता है, कभी भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। इसलिए कहावत है, जैसे किसी गांव की सफाई उसके धोबी घाट से पता चलता है, मरीज आते ही उसका मुंह देख के हम जान जाते हैं। लेकिन एक विडंबना है कि जिसके मुंह में इन्फेक्शन है, पायरिया है, उसको बदबू नहीं आएगा। जिसके साथ बात करेगा ना, उसके सामने अलग, अच्छे इतना बात, चलो आप बड़े हो, आप बहुत अच्छे पोस्ट पोजीशन में हो, तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट कोई बोलेगा नहीं, लेकिन अंदर अंदर से जाए, कैसा आदमी, छी, बदबू मारता है उसके मुंह से। इसलिए ये माउथ का हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। ऐसे भी हम पब्लिक डीलिंग में आते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, मुंह से बदबू आता है तो क्या सोचेंगे? सोचे तो सही। तो आप अपने मुंह को संभालिए। अगर पेरिओडोंटाइटिस हो गया, जिंजिवाइटिस हो गया, रूट तक पहुंच गया, सालों साल लगता है, ठीक नहीं होता है, बहुत मुश्किल है इन्फेक्शन, तो इसलिए दांतों का संभाल कीजिए, मसूड़े के संभाल कीजिए अच्छी तरह से। हरेक को साल में कम दो बार अपना दांत का चेकिंग करना जरूरी है, चाहे आपको कुछ हो ना हो। जब तकलीफ होता है डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो तो टू लेट, वो तो अंदर तक बहुत तक पहुंच गया है, तब जाके आपको पेन होता है, कुछ होता है। तो जैसे नाखून, ये आपका बिल्कुल ऐसे एक ऑर्गन है, दांत भी ऐसे एक ऑर्गन है, बहुत जल्दी इसमें पेन नहीं होता है, अंदर तक इन्फेक्शन पहुंचते के बाद जाके दर्द होता है। तो हर 6 महीने में एक बार दांत का चेकअप किसी डेंटिस्ट से करा लेना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन हो गया तो आपको बहुत तकलीफ मिलेगा। इस प्रकार अगर हमारे हार्ट के नसों पर असर होता है, ब्रेन के नसों पर असर होता है, तो हार्ट अटैक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो इसीलिए आप हर 3-4 महीने में आप अपना 3 महीने वाला शुगर चेक जरूर कराइएगा, ये 7% के अंदर होना चाहिए। आपके ब्लड प्रेशर हर महीना चेक करना चाहिए, 130-80 के अंदर होना चाहिए। आपके कोलेस्ट्रॉल हर 6 महीने में चेक करना चाहिए, सारे कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, सारे प्रकार के कोलेस्ट्रॉल चेक करना जरूरी है, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा आपको क्या हो रहा है, अचानक एक दिन हार्ट अटैक। तो इसलिए जो स्मोकिंग करते हैं, यहां ऐसे कोई नहीं होगा लगता है, कोई भी आदत है किसी को स्मोकिंग करने का? अगर है तो हाथ उठाइए। नहीं है किसी की? अगर स्मोकिंग करते हैं तो कृपया प्लीज स्टॉप इट। अगर स्मोकिंग करते हैं 100% हार्ट अटैक होगा, 100%। और साथ साथ रोज एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, आपको बैलेंस वेजिटेरियन डाइट लेना जरूरी है, जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। देखिए किसी के हार्ट अटैक क्यों होता है, जब उसके हार्ट की जो नसें हैं, ये कोलेस्ट्रॉल शुगर से ऐसे अगर जम गया, इसमें यहां खून ठीक से पास नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, हार्ट को जितने खून सप्लाई होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो बेचारा हार्ट कंटिन्यूअसली 24 घंटा काम कर रहा है, उसको भी तो शक्ति चाहिए ना, तो उसमें जब खून नहीं मिलता है, शुगर नहीं मिलता है, तो दर्द होने लगता है। जैसे एक छोटा बच्चा को खाना नहीं दो तो क्या करेगा, चिल्लाएगा ना, नहीं तो हार्ट को भी पेन होना शुरू हो जाता है, जिसको एंजाइना कहते हैं। लेकिन अगर ज्यादा हो जाता है, जैसे पूरा ब्लॉक हो गया, तो इस एरिया में खून की सप्लाई बिल्कुल नहीं हुई, क्या होगा, सड़ जाता है, जिसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक कहते हैं, एकदम हार्ट अटैक हो जाता है। और जिसको डायबिटीज है, एक विडंबना है, डायबिटीज मरीज को अक्सर करके चेस्ट पेन नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। आदमी जब थोड़ा सा चेस्ट पेन होता है डर जाता है, हाय मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, तुरंत जाके कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएगा। लेकिन डायबिटीज मरीज को कुछ नहीं होता है, इसलिए कभी चेक भी नहीं कराता है, और एक दिन सडन चलते चलते कलाप्स, सडन डेथ। तो इसलिए चेक कराना बहुत जरूरी है। साल में ईसीजी कम से कम एक बार, अगर आपको प्रॉब्लम है तो दो बार करना जरूरी है। मैं आगे बताऊंगा, मैं बताऊंगा कितने बार कब कब चेक करना है, क्या करना है, एक क्लास है मैं बताऊंगा। इस प्रकार पांव पर अगर असर होता है, पांव के नसों पर असर होता है, जैसे यहां खून की सप्लाई नहीं हुआ तो देखो काला हो गया, ये उंगली काटना पड़ता है। अगर हड्डियों पर असर होता है तो हड्डी चूरा चूरा हो जाता है, पांव ऐसा फ्लैट हो जाता है। हमारे पांव देखो तो ऐसे आर्च होता है, एक्चुअली आप चलो ऐसे खड़े रहो तो एक गैप रहता है, आर्च जैसा होता है, खड़ाऊ जैसा होता है। लेकिन जिसका पांव पर हड्डी पर असर आ गया, फ्लैट फुट हो जाता है, यहां अल्सर हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली चलते समय यहां प्रेशर होता है तो अल्सर हो जाता है। जब भी चलेंगे उसमें प्रेशर, जब भी चलेंगे प्रेशर, तो घाव सूखेगा नहीं, साल साल सूखेगा नहीं। और नसों पर असर होता है तो ऐसे पांव टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उंगलियां देखिए कैसे ऐसे टेढ़े मेढ़े डिफर्मिटी हो जाती है, क्लॉट टोज कहते हैं इसको। जो बहुत टाइट जूता पहनते हैं उनके ऐसे पांव हो जाते हैं। इसलिए आप सभी के जूते जितने खुले खुले हो अच्छा, माताओं के चप्पल तो बिल्कुल एकदम बड़ा साइज का, पांव किससे बड़ा साइज होना चाहिए, लेकिन एकदम स्लिक, आधे उंगलियां बाहर, एडी भी बाहर, एकदम हार्ड, इतने हाई हील ठड़क ठड़क करके चलते रहेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। कभी ऐसे चप्पल पहनिए नहीं, नुकसान करेगा। जूता कभी भी खरीदते हैं तो आफ्टरनून में खरीदिए, सवेरे सवेरे जूता नहीं खरीदना है, क्योंकि रात को जब सोते हैं आपके पांव सिकुड़ा हुआ रहता है, उस समय जूता खरीदा शाम को टाइट हो जाएगा। सारे दिन हम खड़े रहते हैं तो पांव थोड़ा सूजा हुआ रहता है, उसी वक्त जूता खरीदेंगे तो आपको उस समय कंफर्टेबल है, टाइट नहीं है, लूज नहीं है, अच्छा है। हमेशा जूता जितना सॉफ्ट मुलायम हो, चप्पल जितना मुलायम हो उतना अच्छा है। सामने कभी भी पॉइंटेड नहीं हो, पॉइंटेड बिल्कुल नहीं, सामने जितना ब्रॉड हो अच्छा है, ताकि आपके ये सारे टोज ऐसे क्लॉज ना हो। ठीक है, आपको थोड़ा सा कॉस्टली जूता खरीदना पड़ेगा, लेकिन आपको लाइफ लॉन्ग आपका पांव संभाल के रखेंगे, आप ठीक रहेंगे, सही सलामत रहेंगे। इसलिए पांव का संभाल करना जरूरी है, न्यूरोपैथी हो जाता है, ऐसे घाव हो जाता है तो सालों साल नहीं बढ़ता है, हड्डी ये पूरा एकदम क्रैक हो जाता है तो चारकोट आर्थ्रोपैथी हम कहते हैं, ये भी ठीक नहीं होता है। किसी के ऐसे उंगली डिफर्मिटी हो जाती है, प्रेशर होके यहां देखिए कैसे कैलोसिटी हो जाता है। इसलिए मैं बताता हूं, रोज आप अपने पांव को चेक करो, जितने बार अपना फेस देखते हो मिरर में उतने बार अपना पांव को भी देखना जरूरी है, कहीं कट तो नहीं हो गया, कहीं डिफर्मिटी तो नहीं हो गया, कहीं कैलोसिटी तो नहीं हो गई, कहां अल्सर तो नहीं हो गया। पांव को देखना जरूरी है, देवी देवताओं के चरण जैसा पांव होना चाहिए, ताकि कोई धुलाई करके आपके पांव से चरणामृत पिए, नहीं तो बहुत तकलीफ मिलेगा। देखिए, किसी को न्यूरोपैथी हो जाती है, यहां ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो हम वास्कुलर डॉपलर से टेस्ट करते हैं, ऐसे काला काला हो जाता है, सड़ जाता है, काटना पड़ता है। अगर नसों ब्लॉक हो गया, खून की सप्लाई नहीं होती है, तो पांव में बहुत दर्द होगा। आप थोड़ा सा चलेंगे ये काप मसल्स इतना पेन करेगा, आप बैठ जाने की इच्छा होगी, बैठ जाएंगे ठीक लगेगा, फिर चलना शुरू करेंगे फिर पेन होगा। समझ जाइए आपके खून की सप्लाई ठीक नहीं है, पांव काला काला दिख रहा है, ठंडा हो रहा है, समझ जाइए आपके खून की सप्लाई ठीक नहीं है। अगर आपके पांव में खून की सप्लाई ठीक नहीं हो रहा है, यहां नस में ऐसे ब्लॉक हो गया, पांव में खून की सप्लाई नहीं हो रही है, क्या होगा जानते हैं? क्या होगा देखो क्या होगा। ये प्रैक्टिकल पेशेंट्स का फोटोग्राफ है, पूरा काला होके सड़ गया, पूरा यहां से काटना पड़ा, एकदम ऐसे हो जाता है। तो इसलिए अपने पांव को संभाल कीजिए, नहीं तो पांव कटवाना पड़ता है। ये देखिए, कभी कभी फोड़े हो जाते हैं तो लोग आगे कहते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ा सा घाव हो गया, फोड़ा हो गया। ये थोड़ा सा नहीं है, ये व्यक्ति को भी यहां से कटवाना पड़ा, अंदर अंदर इन्फेक्शन इतना फैल जाता है कि बात मत पूछिए, ये साधारण नहीं समझिए। थोड़ा सा कहीं फोड़ा होता है तो तुरंत ड्रेसिंग कराइए, एंटीबायोटिक लीजिए, ठीक कीजिए। देखिए क्या हालत होता है, उंगलियां काट देनी पड़ती है, ऐसे हालत होता है। बहुत भाई बहनों का अभी भी चेक करूंगा तो उनके एड़ियां ऐसे फटे हुए रहते हैं, जिसके एड़ियों में क्रैक्स है आप खुद चेक कीजिए। ये क्रैक्स होना माना जर्म्स के लिए दरवाजा है। ये स्किन हमारे लिए बहुत एक अच्छी कवरिंग है, ड्रेसिंग है, जो जर्म्स को अंदर घुसने नहीं देते हैं। अगर क्रैक हो गया, जर्म्स घुसेंगे, फिर इन्फेक्शन होके काटना पड़ेगा टांग। अभी अभी की बात, पिछले महीने की बात मैं आपको सुनाता हूं। माउंट अबू में महाराष्ट्र से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति परिवार के साथ गया था बाबा से मिलने के लिए। वो दिल्ली होके आगरा होके गए, आगरा ताजमहल देखने गए नंगे पांव में चल के। जब माउंट अबू पहुंचे नीचे शांतिवन में, वहां जो डॉक्टर थी वो मुझे फोन करके कहती है, डॉक्टर साहब एक भाई आया है, उसका शुगर 300 है और उसके पांव में थोड़ा लाल लाल दिख रहा है। मैं बोला तुरंत भेजो ऊपर तुरंत, आपको विश्वास नहीं होगा। 7 दिन में उसको 1 लाख के आसपास पैसा खर्च करना पड़ा, बड़ा मुश्किल से उसका जान बचाया। एक दिन में यहां, दूसरा दिन यहां, तीसरा दिन यहां तक इन्फेक्शन, एकदम सड़ने जैसा हालत, उनका ब्लड प्रेशर एकदम डाउन, आईसीयू में रखे उनको कितना मुश्किल से बचाया। कितने लोग मर जाते हैं। अभी अभी मैं जस्ट यहां आने से पहले ही एक माताओं को एडमिट किया था, 92 उम्र की, कितना एक दिन में 15,000 की एंटीबायोटिक खाली लग रहा था, बहुत मुश्किल से जान बचाया। तो ये क्रैक होना बहुत बुरी निशानी है, आपके पांव में कभी भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक होता है तो लिखिए पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली ये हार्डवेयर स्टोर में मिलता है, पेट्रोलियम जेली नाम से आता है। ये वैसलीन ही है, उसमें कोई खुशबू नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट वैसलीन है। रोज रात को सोने से पहले पेट्रोलियम जेली से अपना पांव को अच्छी तरह से लगा के सोना है। सवेरे उठने के बाद, नहाने के बाद भी अच्छी तरह से लगाना है। सारे शरीर अगर ड्राई होता है तो सारे शरीर में भी लगा सकते हो। तो पेट्रोलियम जेली हार्डवेयर स्टोर में मिलता है, एक पाव, आधा किलो, एक किलो का, सस्ता है। आप अगर ऐसे वैसलीन खरीदेंगे तो बहुत महंगा है, थोड़ा सा खुशबू देके बहुत कॉस्टली बेचते हैं। पेट्रोलियम जेली में खुशबू नहीं होता है लेकिन सस्ता है, वही लगाइए। अगर पेट्रोलियम जेली किसी को नहीं मिलता है तो नारियल तेल भी लगा सकते हो, सरसों का तेल भी लगा सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बात क्यों कह रहा हूं, अगर बहुत लोग ऐसे नारियल तेल, सरसों का तेल लगाते हैं जो खाने पीने के तेल है, और नीचे सोते हैं जमीन में, रात को चूहा आता है और एक उंगली खा के चला जाता है, सवेरे देखो तो पूरा खून खून। इसलिए अगर कभी अगर उंगली खोना है तो फिर ये सब तेल लगाइए, इसलिए मैं मना कर रहा हूं। जो खटिया पे सोते हैं ठीक है, अगर जमीन में सोते हैं कहीं चूहा आया रात को, वो तेल के खुशबू से आता है और फूंक मारता है और काट के खा के चला जाता है। तो इसलिए बहुत सावधान, बहुत सावधान मैं आपको बता रहा हूं, आपके पांव का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जो लंबे समय तक पालती मार के बैठते हैं ऐसे गांठे हो जाते हैं, गांठे हो जाते हैं ऐसे, देखिए ये गांठे भी बहुत खराब है। यहां एकदम हड्डी जहां जहां है उधर गांठ हो जाते हैं, उसके नीचे अल्सर हो जाता है तो अंदर स्प्रेड होता है तो टांग गंवाना पड़ता है। तो लंबे समय तक पालती मार के ऐसे गांठ नहीं होनी चाहिए। अगर गांठ है तो उसका इलाज भी हम जानते हैं, उसको डिब्राइड करना पड़ता है, हमारे पास आएंगे तो कर सकते हैं। ये भी सावधानी रखनी है, स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस होती है। मैं जो जैसे बताया, एक दिन यहां इन्फेक्शन, एक दिन यहां, एक दिन यहां, तीसरे दिन ओम शांति। तो इसलिए बहुत डेंजरस है, कहीं भी इन्फेक्शन होता है इसका ध्यान रखना जरूरी है। इस चित्र से क्या देख रहे हैं आप, इस चित्र में ये व्यक्ति, इसको डायबिटीज है, ये पांव दिखा रहा है, ये भाई इसका फुट केयर कर रहा है, ये पांव काला काला हो गया है ना नहीं? लेकिन ये दूसरा पांव देख रहे हैं, ये दूसरा पांव देख रहे हैं, वो ऑलरेडी कट चुका है, वो आर्टिफिशियल लिम लगा हुआ है, जयपुर फुट लगा हुआ है। अर्थात एक व्यक्ति अगर किसी भी कारण से अगर टांग कटवाना पड़ा, दूसरे टांग कटने के लिए कोई टाइम नहीं लगता है, 2-4 महीना में, 1-2 साल में कट ही जाता है। अगर पांव गंवाना है तो लापरवाही कीजिए, नहीं तो देवी देवताओं के चरण जैसा संभालिए, अपने पांव को बचा के रखिए। भले पैसा थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, अच्छे चप्पल जूते खरीदिए। चप्पल एकदम मुलायम होना चाहिए, जो घर में पहनने के लिए, बड़ा साइज का, एकदम पतले पतले, स्लिक नहीं, हाई हील तो बिल्कुल नहीं पहनना है, सॉफ्ट वाला, दो फीते वाले चप्पल कभी नहीं पहनना है, चौड़ा वाला, वेलक्रो लगा हुआ सैंडल हो तो बहुत अच्छा। और आजकल माताओं बहनों के लिए हाफ शू मिलते हैं, जहां लेस नहीं होता है, आप पांव लगाओ, ग्लाइडर कंपनी का मिलता है, लिबर्टी कंपनी का मिलता है, बहुत सॉफ्ट कैनवास का, वो पहनिए। कभी भी सॉक्स नायलॉन वाला नहीं पहनिए, नहीं पहनिए, नहीं पहनिए, सिंथेटिक सॉक्स कभी नहीं पहनना है, भले सस्ते में मिलता है। आपको हमेशा कॉटन सॉक्स पहनना है, कॉटन सॉक्स। अगर कॉटन सॉक्स पहनेंगे, नंगे पांव नहीं चलना है, कान पकड़ लीजिए, कभी भी नंगे पांव में नहीं चलेंगे, बोलना सभी, कभी भी नंगे पांव में नहीं चलेंगे, बोलिए सभी जोर से, थैंक यू। क्यों कह रहा हूं, देवताओं के चरण जमीन पर नहीं लगता है, आप सभी होवनहार देवी देवताएं हो, आपके चरण जमीन पर नहीं टच होना चाहिए। अगर नंगे पांव में कभी चले, टांग कटवाना पड़ेगा, उस समय याद करना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कुछ भी हो जाए, नहीं, ग्रास में भी कभी भी कहीं भी मॉर्निंग वॉक कहीं भी कभी भी नहीं चलना है। वो ग्रास में अगर कहीं एक पिनकटा होगा, कुछ होगा, लग गया, तो उस समय नानी याद आएगी, बिल्कुल नहीं, चप्पल के बिना कभी भी नहीं चलना है, नहीं चलना है। और कभी भी जब वॉकिंग करते हैं, चप्पल पहन के नहीं, वॉकिंग जब करते हैं, या तो अच्छा सैंडल पहनिए जिसमें वेलक्रो होगा अच्छी तरह से, सबसे अच्छा जूता पहन के, अगर स्पोर्ट्स शूज पहन सकते हैं, लेस पहन के, अच्छे क्वालिटी का वाला खरीदेंगे, तो आपको चलने में भी मजा आएगा, एकदम बढ़िया लगेगा। अब हार्ड चप्पल पहनेंगे, चुभ रहा है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, कहीं मोच हो गया, गिर पड़ेंगे, ऐसे को तैसे, तो इसलिए कभी चप्पल पहन के नहीं चलना है, जूता पहनिए, चलिए, सबसे अच्छा है, ठीक है। तो आप अपने पांव को बचाइए, आपके, आप लिख के रखिए, बाद में पूछना, लिख के रखना, बाद में पूछना। तो आप अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल रखिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखिए, कोई भी जरा सा कहीं थोड़ा देखा, कुछ हुआ, तुरंत डॉक्टर का सलाह लीजिए, नहीं तो पांव गंवाएंगे, आपको मैं बता रहा हूं। इतने भाई बहनों का मैं देखता हूं, पांव ऐसे हालत में आते हैं, सालों साल तक इतना तकलीफ पाते हैं, देखा नहीं जाता है, तो इसलिए संभालिए। इन्फेक्शन बहुत कॉमन है डायबिटीज पेशेंट के लिए, क्योंकि जर्म्स को शुगर मिलता है तो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और फंगल इन्फेक्शन खास, इसलिए ये पांव की जो उंगली होते हैं, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, दोनों टोज के बीच में हमेशा देखना, यहां चेक करना, पांव के बीच में, उंगलियों के बीच में, यहां सफेद सफेद अगर दाग हो रहा है, फंगस इन्फेक्शन हो रहा है। कभी भी नहाने के बाद एक सूखा कपड़ा में अच्छी तरह से उंगलियों के बीच में लगा के साफ करना, सूखा रखना, गीला रहेगा, इन्फेक्शन सुनिश्चित 100% होगा। इसलिए कभी भी पांव गीला नहीं होना चाहिए, नहाने के बाद आके अच्छी तरह से पोंछना जरूरी है। जहां जहां भी स्किन फोल्ड होते हैं, वहां फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, मुंह में भी, जीभ में भी, नाखून में अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, नाखून एकदम मोटा मोटा हो जाता है, ब्रिटिल हो जाता है, और नाखून ऐसे देखिए, इनग्रोइंग टोनेल, कोई एकदम टाइट जूता पहनता है तो उनके नाखून ऐसे हो जाते हैं, बहुत पेन होता है फिर, तो अपना ध्यान रखना है। मैं सभी को कह रहा हूं, आप दिन में दो बार जरूर नहाइए, कुछ भी हो जाए दो बार नहाना जरूरी है, और छोटे कपड़े भी दो बार चेंज करना जरूरी है, सवेरे एक बार, शाम को एक बार। छोटे कपड़ों को जब भी आप साबुन से धोते हो, अच्छी तरह से पानी से रिंज कीजिएगा, वहां साबुन का जरा भी थोड़ा सा हिस्सा नहीं रहना चाहिए, अगर अल्कालाइन है तो आपको फंगस इन्फेक्शन 100% होगा। और धोने के बाद कपड़ा पानी की इकोनॉमी नहीं कीजिए, अच्छी तरह से धुलाई कीजिए, धूप में सुखाइए, धूप में सुखाएंगे तो सारे जर्म्स मर जाएंगे, तो इसलिए छोटे कपड़े सभी दो बार जरूर चेंज करिएगा, दो बार अच्छी तरह से नहाइएगा, बहुत पसीना छूटता है तो गर्मी के मौसम में तीन बार चार बार भी नहाइए, लेकिन स्वच्छ रहिए, और जहां भी पसीना छूटता है अच्छी तरह से आप डस्टिंग पाउडर वगैरह भी लगा सकते हैं। कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फोड़े होते हैं, घाव हो जाते हैं। कान में अगर इन्फेक्शन हो गया तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, ब्रेन तक पहुंच जाता है। और कान का इन्फेक्शन इतना सीरियस है 99% लोग मर जाते हैं, कितना भी हायर एंटीबायोटिक दो। कभी पांव में सड़ जाता है तो एकदम दो दिन में तीन दिन में पूरा सारा शरीर में फैल जाता है इन्फेक्शन। ऐसे होता है काला काला होकर सड़ जाता है, बिल्कुल ब्रेन तक इन्फेक्शन होता है। तो कभी भी कहीं फोड़ा हुआ कुछ हुआ चलाइए नहीं, चलाइए नहीं, जरूर एंटीबायोटिक लेके इन्फेक्शन को कंट्रोल कीजिएगा। डायबिटीज मरीजों को ट्यूबरक्लोसिस टीबी होना बहुत कॉमन है। आवाज नहीं सुनाई देता है? डायबिटीज मरीज को टीबी होना बहुत कॉमन है, इसलिए आप सभी जहां पब्लिक बहुत इकट्ठे होते हैं, जहां बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत खांसी कर रहे हैं लोग, ऐसे जगह से बचिए, नहीं तो आपको टीबी का इन्फेक्शन होने का बहुत संभावना रहता है। तो अपने आप को बचाइए। निमोनिया होना बहुत संभावन, बहुत लोगों को निमोनिया हो जाता है, निमोनिया से भी बचिए। निमोनिया के लिए एक बहुत अच्छा वैक्सीन आजकल निकला है, एक बार वो वैक्सीन ले लिया तो 10 साल तक आपको निमोनिया नहीं होगा। उसका नाम है निमो 23, PNEUMO निमो, PNEUMO निमो 23, एक बार ही इंजेक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन 10 साल तक आपको फिर ये निमोनिया वगैरह नहीं होगा। तो PNEUMO निमो 23, ये इंजेक्शन मिलता है, वैक्सीन कोई भी अच्छा मेडिकल शॉप में मिलेगा, एक बार इंजेक्शन ले लिया 10 साल तक आपको ये इन्फेक्शन होगा नहीं। तो निमोनिया जिसको हो जाता है, बहुत लोग अकाले मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, निमोनिया भी बहुत कॉमन है। ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाती है। डायबिटीज मरीज को सब प्रकार का इन्फेक्शन होने की संभावना है, साथ में हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर भी असर होता है। फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, अभी एक भाई बोल रहे थे मेरा ये हाथ तो उठता है, ये हाथ उठता ही नहीं है, इतना होता है ये, क्योंकि ये शुगर लंबे समय तक हाई होने के कारण यहां जम जाता है तो हाथ जकड़ जाता है, उठता नहीं है। सभी अपने हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ पूरा उठाइए, उठता है सभी का? जिसका नहीं उठता है रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे ठीक हो जाएगा। सवेरे आज जैसे एक्सरसाइज किए, डेली ताली बजाएंगे, ऐसे उठाएंगे, एकदम पूरा ठीक हो जाएगा। जो नहीं करते हैं उनका हाथ अकड़ जाता है। माताएं खास, पहले जमाने में कपड़े धुलाई करते थे, आजकल वॉशिंग मशीन आ गया, ग्रर हो गया साहब। पहले जमाने में कपड़ा जाके धूप में सुखाते थे, हाथ ऐसा करते थे कम से कम, आजकल वो नहीं करते हैं, ग्रर सूख गया। तो फिर हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा हाथ ही नहीं उठता है, हाथ ही नहीं, हाथ कैसे उठेगा, जिंदगी में ऐसा नहीं किया। तो इसलिए रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है, समझे? तो फ्रोजन शोल्डर होता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत दुखता है, एकदम इतना तकलीफ होता है कि बात मत पूछिए। इस प्रकार इसको हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। यहां नस दब जाता है तो ये जो ब्लू हिस्सा, ये हाथ में इतना दर्द होता है कि बात मत पूछिए। फिर इसको ऑपरेशन करके ठीक करना पड़ता है, ये यहां से रिलीज करना पड़ता है। कभी कभी ये उंगलियां ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, ट्रिगर फिंगर हो जाता है, सीधा नहीं होता है, ऐसे ऐसे हो जाता है। कभी कभी ये जो थंब है यहां ये आर्थराइटिस हो जाता है, ये उंगली ऐसे नहीं कर सकते, इतना पेन होता है। तो टेनिस एल्बो होता है, ये सब शुगर के साइड इफेक्ट है। जब शुगर ज्यादा होता है सारे शरीर में ऐसा अंग नहीं रहता है जहां असर नहीं होता है। मैं कहता हूं शुगर को कंट्रोल करो, बचो ये सब बातों से। और क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है? शुगर ज्यादा होने से आप डर तो नहीं रहे हैं? आपको डराने के लिए ही दिखा रहा हूं। अगर आप डरेंगे तो जिंदगी में अलबेले नहीं होंगे, हमेशा केयरफुल रहेंगे, शुगर कंट्रोल करके रहेंगे। अगर नहीं डरेंगे ना, इसलिए तो सब गड़बड़ करके आते हैं हमारे पास। तो देखिए, अगर शुगर किसी का ज्यादा लंबे समय तक होता है, दो प्रकार के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, छोटे नसों पर, बड़े नसों पर। ऑलरेडी बता चुका हूं, आंखों पर असर होता है तो अंधा हो जाता है आदमी, किडनी पर असर होता है तो किडनी फेल हो जाता है, नसों पर असर होता है तो न्यूरोपैथी होता है तो सुन्न हो जाता है, घाव भरता नहीं है सालों साल। अगर बड़े नसों पर होता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन में होता है तो पैरालिसिस हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, टांग पर होता है तो टांग कटाना पड़ता है। इस प्रकार धीरे धीरे कई ऐसे कॉम्प्लिकेशन से सडन होता है, ये धीरे धीरे होता है लेकिन ये बता रहा हूं जो सडन होता है। डायबिटीज का सडन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, अचानक कॉम्प्लिकेशन? एक तो शुगर लो हो जाना या तो शुगर ज्यादा हो जाना। अगर शुगर लो भी हो गया डेंजरस है, ज्यादा भी हो गया डेंजरस है। अगर लो हो गया तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और हाइपोग्लाइसीमिया सबसे खतरा है। किसी का शुगर ज्यादा लो हो गया तो बेहोश हो जाता है आदमी, कई लोग तो मर भी जाते हैं। तो लो शुगर भी बहुत खतरा है। और लो शुगर क्यों होता है, दवाई ले लिया, खाना नहीं खाया, भूल गया, एकदम शुगर डाउन हो जाएगा। कई सारे कारण है। इसी प्रकार हाई शुगर अगर होता है तो हाई शुगर से भी हमारे शरीर से ये चर्बियां पिघलने लगती है और कई प्रकार के एसिड बनते हैं जिसको कीटो एसिडोसिस हम कहते हैं, और हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट कहते हैं। ये बहुत खतरा है, आईसीयू में रख के पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, बहुत लाखों रुपया गंवाना पड़ता है, बहुत मुश्किल से जान बचाना पड़ता है, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। तो दोनों खतरा है, हाई ब्लड शुगर भी, लो ब्लड शुगर भी। लो ब्लड शुगर के बारे में आप सबको जानना जरूरी है। लो ब्लड शुगर क्योंकि बहुत कॉमन है, जो भी दवाइयां लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं, अगर खान पान और दवाई और एक्सरसाइज का संतुलन नहीं रखते हैं तो आपका शुगर लो हो जाएगा। आप सवेरे सवेरे खाना ठीक से नहीं खाए हो, दवाई ले लिए हो, खूब एक्सरसाइज कर दिया, एकदम शुगर डाउन हो जाएगा। आपने इंजेक्शन ले लिया इंसुलिन, किसी भी भूल गए, कहीं चल पड़े कि खाने की इच्छा नहीं है, थोड़ा सा खा लिया, एकदम शुगर डाउन हो जाएगा। बहुत सारे कारण है, आप सभी को समझना जरूरी है। लो ब्लड शुगर किसे कहा जाता है? नॉर्मल ब्लड शुगर 70 to 140 है। अगर किसी का शुगर 70 से कम हो गया उसको हम लो ब्लड शुगर कहते हैं। और अगर किसी का लो ब्लड शुगर है तो अगर उसकी निशानियां दिखाई दे रही है और तुरंत उसको ग्लूकोज पिला दो तो ठीक हो गया, तो समझ जाइए कि इसको लो ब्लड शुगर हुआ था। ग्लूकोज पीने से तुरंत अगर ठीक हो गया, समझ जाइए लो ब्लड शुगर हुआ था। तो लो ब्लड शुगर पहचानेंगे कैसे, क्या होगा? आपके हाथ पांव कंपने लगेगा, अगर शुगर डाउन होने लगेगा, सेकिंग होने लगेगा, बहुत पसीना छूटेगा। अगर किसी को, सबको एकदम ठंडी लगती होगी, किसी का शुगर डाउन होने लगेगा तो उसको खूब पसीना छूटेगा, एकदम गीला हो जाता है, पूरा बिस्तर भी गीला हो जाता है। इस प्रकार बहुत एकदम एंग्जाइटी, बहुत टेंशन होगा, चक्कर आने लगेगा, बहुत भूख लगेगी, बहुत भूख लगेगी, खाने की इच्छा होगी, और हार्टबीट इतना तेज धड़कन बढ़ेगा, आपको पता चलेगा मेरा हार्टबीट हो रहा है, धड़कन तेज बढ़ जाएगा। साथ में आपको धुंधला दिखेगा, कोई भी चीज अच्छी तरह से दिखेगा नहीं, धुंधला हो जाएगा, और बहुत कमजोरी लगेगी, इतना थकान लगेगा कि बात मत पूछिए, बहुत हेडेक होने लगेगा, बहुत हेडेक होने लगेगा। अगर सवेरे सवेरे आपको बिना कारण हेडेक हो रहा है, समझ जाइए रात को आपका शुगर डाउन हो गया था, आप नींद की अवस्था में आपकी शुगर डाउन हो गया था, सवेरे सवेरे इसलिए हेडेक हो रहा है। रात्रि को अगर शुगर चेक करेंगे तो पता चलेगा। बिना कारण आपको बहुत सरदर्द हो रहा है तो शुगर डेफिनेटली लो है, आप चेक कर लीजिएगा। और एक नॉर्मल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, कभी गुस्सा नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, चिड़चिड़ होने लगेगा, मूड खराब होने लगेगा, समझ जाइए इसका शुगर डाउन है। तो ये सारी निशानियां है, परंतु ये दूसरी दूसरी बीमारियों में से भी ये लक्षण आप देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप डायबिटीज मरीज हैं, आपको ये सब निशानियां अगर दिखाई दिया तो तुरंत शुगर चेक कर लीजिए, नहीं तो बड़ा खतरा है। क्यों कह रहा हूं, जब 80 से शुगर डाउन हो जाता है, हमारे शरीर से इंसुलिन बनना कम हो जाता है, 70 से कम हो गया तो शुगर को बढ़ाने वाले हार्मोन जो ग्लूकागन आदि, वो बनना शुरू हो जाता है, बढ़ जाते हैं। 60 से कम हो गया तो हाथ पांव कांपने लगेगा, पसीना छूटने लगेगा, तेज धड़कन बढ़ने लगेगा। 50 से कम हो गया तो आदमी पहचान नहीं पाता है, कहां है, क्या है, कुछ है, उसको कुछ सुध-बुध नहीं रहता है। 40 से कम हो गया तो ड्राउजी होने लगता है। 30 से कम हो गया कोमा हो जाता है। और 20 से कम हो गया मिर्गी आना शुरू हो जाता है, कन्वल्सन, मिर्गी बात हो जाता है, और 10 से कम हो गया फुल स्टॉप, कमा के बाद क्या होगा, फुल स्टॉप। तो इसलिए शुगर लो होना भी बहुत डेंजरस है। कई भाई बहने क्या करते हैं, रात को दवाई लेते हैं, खाना नहीं खाते हैं, सो जाते हैं, इंजेक्शन ले लिया, नहीं खाया, सो गया, और देखा जाता है सवेरे उठा ही नहीं, निद्रा महानिद्रा। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं, हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं डेड इन बेड सिंड्रोम, बेड में खटिया में सोए सोए डेड। तो इसलिए बहुत खतरा है, आप कभी भी भूखा नहीं रहिए, कम कम 5 बार 6 बार खाइए। इसलिए आपको एक प्रश्न आया था, एक डायबिटीज मरीज को कितने बार खाना चाहिए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कितने बार, 5 बार कम से कम। मैं आपको डाइट का क्लास में बताऊंगा। तो डायबिटीज में जब शुगर डाउन हो जाता है कई प्रकार की निशानियां दिखाई देती है, आपको क्या करना चाहिए, तुरंत अगर उस समय आपको फ्रूट जूस अलाउड है, कोई भी फ्रूट जूस, चाहे आम रस, चाहे गन्ना रस, चाहे कोई भी रस फ्रूट जूस है तो पी लो, नहीं तो आपके पास दूध है तो उसमें 3 चम्मच चीनी या ग्लूकोज डाल के पी लो। अगर आपके पास कोई कैंडीज है, ऐसे पॉपिंस आदि है, ये आप 3-4 चुबा दो तो एकदम शुगर ठीक हो जाएगा। लेकिन हरेक के पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए, जो भी डायबिटीज पेशेंट है, जो भी है, हरेक के पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए। आप तुरंत ग्लूकोमीटर में चेक करेंगे तो पता चल जाएगा आपका शुगर कितना है। अगर शुगर डाउन है तो थोड़े समय के अंदर फिर से एक अच्छा नाश्ता कर लीजिए, अगर कुछ नाश्ता कर लेंगे तो फिर शुगर डाउन नहीं होगा, नहीं तो थोड़ा सा फ्रूट जूस पी लिया, फिर आधा घंटे के बाद फिर शुगर डाउन होने लगेगा। तो इसलिए अच्छा नाश्ता ही कर लीजिए ताकि ठीक हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी आप ट्रैवलिंग करते हैं खास, तो हमेशा आपके जेब में खाने पीने का चीज जरूर रखिएगा। अगर कहीं पहुंचना है, आप सोचेंगे मुझे 1 बजे तक तो पहुंच जाऊंगा उधर, वहां जाके लंच करूंगा, मान लीजिए गाड़ी मोटर की बात है, कभी कुछ हो गया, 4 बज गया, 4 बजे तक भी नहीं पहुंच पाया, क्या होगा, शुगर डाउन होने लगेगा, बेहोश हो जाएंगे। इसलिए हमेशा खाने पीने का चीज खूब लेके जाओ, आप किसी को खिलाओ नहीं खिलाओ, लेकिन जेब में होना चाहिए, आपके बैग में होना चाहिए हमेशा। और कोई भी ड्राइवर, कोई गाड़ी ड्राइविंग करते हैं तो याद रखिए हर 2 घंटा में कुछ कुछ खाते रहना है। लंबे समय तक ड्राइविंग करते हैं, अगर आपका शुगर ड्राइव कम हो गया तो कहां जाके पहुंचेंगे, खुदा जाने, एक्सीडेंट भी हो सकता है और कहीं भी लेके जाके पहुंच सकते हैं। इसलिए जो ड्राइवर होते हैं, आप अगर खुद डायबिटिक पेशेंट नहीं है, आपका ड्राइवर आपको पता है कि ये डायबिटिक है, तो रास्ते में खिलाते खिलाते उसको जाइए, कभी भी भूखा नहीं रखिए। और एक बात है, अगर शुगर डाउन होता है तो आदमी कुछ भी व्यवहार करता है, कैसे भी व्यवहार करता है, कुछ भी हो सकता है, मैं बता रहा हूं, तो कोई उल्टा सुलटा व्यवहार कर रहा है तो समझ जाइए उसको डायबिटीज है, उसको देखेंगे तो शुगर डाउन होगा। तो इसलिए कभी भी अपना खाना पीना दवाई ये सब बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखेंगे तो बहुत 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 नुकसान होगा। एक डायबिटीज मरीज को अगर बिन कारण से हेडेक हो रहा है, हाथ पांव कांप रहा है, बहुत पसीना छूट रहा है, बहुत थकान लग रहा है, कमजोरी लग रही है, बहुत भूख लग रही है, तो समझ जाइए उसका शुगर डाउन है, चेक करिए जरूर। आप सभी में से कितने लोगों के पास ग्लूकोमीटर है, हाथ उठाइए, अच्छी बात है। लेकिन जिनके पास नहीं है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप समझ नहीं सकेंगे, कभी प्रॉब्लम होगा। और आजकल 1000 वैरायटी ग्लूकोमीटर मिलता है, किसी का रिपोर्ट किया, किसी को रिपोर्ट किया, एक अच्छी कंपनी का, स्टैंडर्ड कंपनी का खरीदेंगे तो धोखा नहीं होगा, आपको सही सलामत पता चलेगा। 3-4 कंपनी है जिसके शुगर का रिपोर्ट बहुत ऑथेंटिक है, एक होता है जॉनसन कंपनी, वन टच नाम से आता है, दूसरा होता है बेयर कंपनी, बेयर कंपनी का कॉन्कर नाम से आता है, तीसरा कंपनी है आर्क्रे ग्लूकोकार्ड नाम से आता है। ये सब बहुत, इसके रिपोर्ट एकदम लगभग सही है, परंतु बहुत सस्ते कंपनीज के ग्लूकोमीटर मिलते हैं, आप ऐसे सस्ते चीज खरीदेंगे, धोखा है, आपका शुगर होगा 100, दिखाएगा 200, और आप एक्स्ट्रा गोली ले लिया, इंजेक्शन ले लिया तो एकदम कोमा में चले जाएंगे। इसलिए कभी भी खरीदना है, भले आप थोड़ा सा पैसा लगता है, लेकिन स्टैंडर्ड कंपनी का खरीदिए और आप सही सलामत रहिए। आप लिख के देना, बाद में बताता हूं सब। अब थोड़ा हो गया और दो मिनट है। दूसरा होता है एक कीटो एसिडोसिस, हाई ब्लड शुगर हो गया तो शरीर में एसिड पैदा हो जाता है। एक्चुअली हमारे शरीर के चर्बी पिघलने लगते हैं जिसके कारण एसिड बन जाता है और वो बहुत खतरा होता है। जिसको कीटो एसिडोसिस हो गया, लैक्टिक एसिडोसिस हो गया, उनको आईसीयू में दाखिल करना पड़ता है। बहुत लोगों का कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है, बहुत लाखों रुपया खर्च होता है, मुश्किल से हम जान बचाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बी अवेयर, द स्वीट बी मे बाइट यू। डायबिटीज की बीमारी एक मधुमक्खी की तरह है, मधुमक्खी अगर काट दिया कैसी हालत होती है, कई लोगों की जान चली जाती है। तो इसलिए ये मधुमक्खी आप तो पाल के रखे हो लेकिन इसको आपको काटे नहीं, ये आप संभाल करके रखिए। डायबिटीज इज ए ग्लोबल एपिडेमिक विद डिवास्टेटिंग ह्यूमन सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो आज डायबिटीज ऐसी एक स्थिति आके पहुंच चुकी है, डायबिटीज की हमारे शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्था को बिल्कुल ध्वस्त विध्वस्त कर चुकी है। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। आपके शरीर का आप ध्यान रखिए क्योंकि ये शरीर आपका एक ही मंदिर है जहां आप सारा जीवन इस मंदिर में रहेंगे, तो इसलिए इसको संभाल के रखिए। आप थक तो नहीं गए? बिल्कुल नहीं, सच बिल्कुल नहीं थके। आपको एक जोक सुना रहे हैं। एक सरदार जी थे, हमेशा गुरुद्वारे में मंदिर में जाते थे। जब भी जाते थे तो उनका चप्पल कोई चोरी करके ले जाता था, बड़े परेशान होते थे। तो इस बार ही वो बहुत एक नया चप्पल खरीदे, नया पैर। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए, हमेशा तो मेरा चप्पल कोई ले जाता है, अभी नया चप्पल खरीदा हूं अभी भी ले जाएगा, क्या करूं। तो एक नया प्लान ढूंढे, सरदार जी हैं तो एक नया प्लान सोचे ताकि उनका चप्पल कोई चोरी करके ना ले जाए। कौन सा प्लान सोचे होंगे? एक चप्पल उधर एक चप्पल उधर रख दिए, ठीक ही बात है। लेकिन सरदार जी है और कुछ सोचते होंगे, वो तो आपने सोचा, और कुछ सोचते होंगे, बताइए बताइए क्या सोचे होंगे, बताइए। कुछ नई विधि, कई नया प्लान आप भी कर सकते हैं, आपकी चप्पल कभी चोरी नहीं होगी। उन्होंने क्या किया देखो, सोचा है कि कोई मेरा चप्पल चोरी करके नहीं लेगा, इसलिए ताला लगा दिया। थैंक यू वेरी मच।